नमस् तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशभानुकृते प्रणमामि हरि की। हा देवी काको हर गद गदयाद्य वाचा चाचे निपत्त भोग दंड पतोद घटारते अस्य प्रसाद मगुदस्य जनस्य गंधर्विके तवगणी गणनम अंग श्यामलिम छटाधिरभितो मंदे कृतेंदे वरम जड्डंजा गुडरोचि सांग विदधतं पट्टमलरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनम सुदिल सद्धामाभिरामोदरम राधा स्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायेन दामोदर भक्त्या विना पराढलक्ष्ये चित्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणानि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। भक्त्या विनापराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणानि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। वैराग्यजुग भक्ति रसं प्रयत्नै अपायन मानन भिक्षु मंधम कृपां बुधिर्ज पर दुख दुखी सनातनस्तम प्रभुमाशु। श्री चैतन्य मनोभीष्टं पापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति यं प्रव्रजन्तमनुतेतमतेत द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव उत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतत्रयं मुनिमान कुसुम त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जिमामि त्वया विना इति देव्यै राधे तं मां शरणम्। चैतन्य महाप्रभु जी के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले श्रील रूप गोस्वामी ने महाप्रभु जी की इच्छानुसार जगत में शुद्धा भक्ति प्रचार करने के लिए आदेश दिया। उन्होंने महाप्रभु जी के इच्छा के लिए पूर्ण करने के लिए भक्ति रसामृत सिंधु एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने भक्ति का सर्वांग पूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया। विशेष करके भक्ति की बड़ी सुंदर परिभाषा उसमें उन्होंने भक्ति किसको कहते हैं इसके लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत शांडुल्य भक्ति सूत्र नारद का भक्ति सूत्र पराशर इत्यादि के विचारों को सबको लेकर भक्ति की एक सुंदर परिभाषा दी जो भक्ति राज्य में इतना सुंदर अभी तक भक्ति का डिफिनेशन भक्ति की परिभाषा नहीं दी गई थी। उन्हीं सब विचारों को लेकर के रूपानुगम में श्रेष्ठ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कुछ ग्रंथ लिखे। उन ग्रंथों में भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु भक्ति रसामृत सिंधु है उसका एक बिंदु, और सनातन गोस्वामी जी का बृहत भगवतामृत है। बृहत भगवतामृत का भगवतामृत कणा और उज्ज्वल नीलमणि रूप गोस्वामी की सबसे श्रेष्ठ कृति है। उसमें केवल मधुर रस का विचार किया गया, जिसके अधिकारी बहुत कम लोग हैं। तो उज्ज्वल नीलमणि की किरण, ये तीन पुस्तकें जब वो अपने गुरु जी के यहाँ पढ़ रहे थे उसी समय उन्होंने लिखा। वृंदावन अभी नहीं आए थे उसी समय में लिखा। अगाध पांडित्य और अगाध रसिक सिद्धांतवीर, अलंकारिक संस्कृत के लिखने वाले, किसी व्यक्ति के लिए फिलॉसफर और रसिक होना कठिन है। सिद्धांतपूर्ण विचार होगा उसका, दार्शनिक होगा तो वो रसिक नहीं होगा, और रसिक होगा तो वो दर्शन की तरफ में नहीं जाएगा। भक्ति रूप गोस्वामी जी रसिक वैष्णव, वो दर्शन को अपने ग्रंथों में उन्होंने आने नहीं दिया। पीछे पीछे भले ही दर्शन उनकी सेवा करता हो, तर्क युक्ति इत्यादि के तरफ एकदम गए नहीं, लॉजिक के तरफ एकदम नहीं गए। और जी गोस्वामी जी हैं सिद्धांत के परिपूर्ण, बड़े भारी दार्शनिक विद्वान है सिद्धांत के, और उसके ग्रंथ उन्होंने लिखे किंतु थोड़ा सा बचा करके लिखा। लिख सकते थे किंतु बचा करके लिखा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में दोनों चीजें देखी जाती, बड़े भारी दार्शनिक भी थे सिद्धांतविद भी थे, तथा साथ ही साथ में रसिक वैष्णव के अग्रगामी थे। उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने देखा कि इन महात्माओं ने, महापुरुषों ने, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि और बृहत भगवतामृत ऐसे सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। उज्ज्वल नीलमणि ये कृष्ण है स्वयं, उसकी किरण एक झलक उन्होंने लिखा थोड़े से में साधकों के लिए, और भक्ति रसामृत सिंधु का एक बिंदु लिखा। एक बिंदु में भी यदि कोई साधक स्नान कर ले तो वो सागर की तरफ में चले, भक्ति रसामृत सिंधु की तरफ। और बृहत भगवतामृत अमृत का कण लिखा है। अभी हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु की तरफ, उसकी बिंदु क्या चीज है, उन्होंने थोड़े से ही भक्ति रसामृत सिंधु को लेकर के रख दिया है साधकों के लिए। ये सब साधकों को पढ़ना चाहिए, समझने की चेष्टा करनी चाहिए। साधक कहते हैं कैसे, किसको, पहले ये समझना चाहिए। भक्ति का साधक होना चाहिए। कृति साध्य भवेत साध्य भाव ससाधना विदा नित्य सिद्ध स्वभाव से प्राकटंग रिदि साध्य। जो साधन होते हैं इंद्रियों के द्वारा, किस चीज का साधन, जिसको उत्तमा भक्ति स्वरूप सिद्धा भक्ति कहा गया है, वो स्वरूप सिद्धा भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रूपम। साधक इस भक्ति के स्वरूप को ही नहीं जानेगा तो इसका साधन क्या करेगा। इसलिए पहले अंततः तो जान तो लेना चाहिए जो भक्ति किसको कहते हैं, स्वरूप सिद्धा भक्ति किसको कहते हैं, पहले जानना चाहिए। उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, पहले ये जानना चाहिए, तब फिर उसके लिए साधन करें। हमारा कुछ पढ़ने के लिए लक्ष्य होना चाहिए ने? हम कुछ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम MA पास कर, मैं डॉक्टर होऊंगा, इंजीनियर होऊंगा, लौकिक विषय, एक सामने लक्ष्य रख करके हमको चलना है। हम रेलगाड़ी में जा रहे हैं, एरोप्लेन में जा रहे हैं, कोई जाने का लक्ष्य ही नहीं हो टिकट ही नहीं लिया हमने कहां का लक्ष्य करके, ऐसे गाड़ी में चढ़ जाएंगे तो उतार देंगे लोग। कोई लक्ष्य होना चाहिए जीवन का, तो भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। उस भक्ति को समझना चाहिए हम लोग को, जो भक्ति क्या है। संक्षेप में अभी मैं बतला रहा हूं, जब 10-5 दिन रहता तो थोड़ा सा इस पर कुछ बोलता है। एक दिन अभी 1 घंटे का समय में थोड़ा सा संक्षेप में बोलता है। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। समस्त इंद्रियों के द्वारा, तन से, मन से, वचन से, जितनी भी हमको इंद्रियां मिली, समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जितनी प्रकार की कायिकी, वाचिकी और मानसिक चेष्टा हो सकती है, और हम कोई अपराध ना करेंगे, अनर्थ नहीं करेंगे, जितने निषेध हैं उनका पालन करते हुए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमारी जितनी भी कायिकी, वाचिकी और मानसिक चेष्टाएं हैं, उनके द्वारा कृष्ण के लिए सेवा करने का नाम ये भक्ति है। इसमें बतलाया गया है कि कोई धातु होती है, धातु माने क्रिया, क्रिया में दो अर्थ होते हैं, निवृत्तिवाचक और प्रवृत्तिवाचक। जैसे सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये निवृत्तिवाचक हुआ है, और सच बोलना चाहिए, ये प्रवृत्ति हुई। उसी प्रकार से हमारी जितनी भी इंद्रियों की चेष्टाएं हैं कृष्ण के लिए रुचिकर हो और आनंददायक हो, साथ साथ में जितने उनके विरोधी कार्य हैं जिससे कृष्ण को प्रसन्नता न हो, ऐसे चीजों को दूर रखना है। सेवा अपराध न हो जाए, धाम अपराध नहीं हो जाए, नाम अपराध नहीं हो जाए, किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो जाए, भक्ति के प्रति अपराध न हो, भगवान के प्रति अपराध न हो, इसमें लक्ष्य रखना होगा। और जो भगवान के लिए रुचिकर सुखकर है वैसे कायिकी, वाचिकी, मानसिक चेष्टाओं को, और जहां पर मन भी नहीं पहुंच सकता है, एक स्थिति ऐसी भी है, उन भावों के द्वारा भगवान की सेवा कीजिए, भावात्मक रूप में। भाव किसको कहते हैं? अभी हम लोग जो कुछ सोचते हैं ना, कभी भावावेश हो जाते हैं, भावावेश में कभी क्रोधित हो जाते हैं, कभी अपमानित हो जाते हैं, ये सब भावनाएं, किंतु ये मन की क्रियाएं हैं। जो मन की क्रिया नहीं है भाव, वो भगवान को प्रसन्न कर सकते। इसलिए भाव जो है, भाव से आरंभ कर, भाव प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, मादन, मोदन, अंतिम स्थिति तक जो राधिका जी का स्वरूप है, वहां तक जितनी भी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगाना ने? तन मन वचन से अति चीज है भाव। इसलिए हमको अभी जो मिला है इनके द्वारा संपूर्ण रूप से, तथा अभी जो प्राप्त करेंगे भाव पीछे, सब कृष्ण की सेवा में लगाए। किंतु उसमें एक बात और रहे कि हम ये सब करेंगे, वो पहले बतलाया ना, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल माने अनुमाने निरंतर होना चाहिए, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से। भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, ये सब जो चीजें हैं, तैल धारावत अविच्छिन्न गति से। अभी कीर्तन कर रहे हैं ना, इतने में बगीचे में एक गाय आ गई ना और चरने लगी। अब आप क्या करेंगे? दृष्टि जाएगी कि नहीं वहां? गाय को हटाना भक्ति है कि नहीं? नहीं तो वो बगीचा चल जाएगी। और इधर हम कीर्तन कर रहे थे और दौड़ करके झट वहां पर चले, अब ये टूट गया ना। इसी तरह से कभी तार टूटना नहीं चाहिए भक्ति का, निरंतर 24 घंटा सारा जीवन तक वो अविच्छिन्न तैर धारावत ये सब चलना चाहिए, तब उत्तमा भक्ति होगी। अभी हम लोग बाध्य हैं, कनिष्ठ अधिकारी है ना, अभी देखिए सब तो गायब कर गई। अभी एक आदमी आ गया शराब पी करके यहाँ मंदिर में, उत्तम भक्त तो उसको देखेगा ही, वो तो तन्मय है शरीर की शुद्ध बुद्ध, किंतु हम जो कनिष्ठ अधिकारी देखेंगे शराब पी कर गया है, बस एकदम क्रोध आ जाएगा और उसको वहां से गले में पकड़ करके बाहर करेंगे, आपकी धारा टूट गई। इसी तरह से सभी चीजों में अभी हमारे लिए जो प्रधान है वो भक्ति राज्य के लिए गौण है, और हम लोगों के लिए अभी कनिष्ठ अधिकारी में जो गौण है वही सिद्ध अवस्था में प्रधान कभी कभी बन जाता है ना? अभी हमारे लिए भाव गौण है, वो भाव आएंगे नहीं, और फूल का बगीचा लगाना, ये करना वो करना, अर्चन बंदन ये सब लोगों को आए हैं उनको देखना सुनना, अभी हमारा प्रधान है। किंतु जैसे जैसे भक्ति आती जाएगी, मध्यमाधिकार आएगा, फिर उसके उत्तम अधिकार, तो इस समय की जो क्रियाएं हैं ये गौण हो जाएंगी और प्रेम हो जाएगा प्रधान। इसलिए बड़ी खूबी के साथ में लोगों ने वर्णन किया, इसलिए निरंतर भक्ति निरंतर होनी चाहिए, किंतु उत्तमा भक्ति में ही वो निरंतर होगा। अभी मध्यमा भक्ति में भी वो बीच बीच में कर सकती है, किंतु हमको ये करना है कि निरंतर भक्ति बन जाए। फिर कहते हैं अनु वैष्णवों के, रसिक वैष्णवों के, उत्तम भागवतों के, मध्यम भागवतों के अनुगत्य में हो, स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए, मैंने सब कुछ जान लिया और कुछ बाकी नहीं है, भाई भक्ति ऐसी चीज है, सिद्धावस्था तक भी आपको अनुगत्य में रहना पड़ेगा। मत विद्वान बनो, मत सब सिद्धांत शास्त्रविद बनो। अभी समझो जी हमारे गुरु वर्ग लोग हैं, उनके अनुगत्य में जैसे कहते हैं वैसे भक्ति को करना है, मनमानी ढंग से नहीं। और एक बात अच्छी तरह से देखना पड़ेगा, कहीं कहीं भक्ति ऐसा मालूम होता है उसमें नहीं है, और जिसमें नहीं है उसमें मालूम होता है जो भक्ति है। इसलिए इसको कहा गया है यदि कृष्ण अनुशीलन, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यदि हो तो कभी कभी उसमें अत्यंत अधिक रूप में व्याप्त होती हुई दिखाई देती है भक्ति। जैसे भक्ति का लक्षण अभी बतलाया जो कृष्ण को प्रसन्न होना चाहिए, कृष्ण के लिए रुचिकर होनी चाहिए। कभी 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 ऐसा भी हो जाता है, चारण मुष्टिक से युद्ध होता है ना कृष्ण का, तो कृष्ण को रुचिकर लगता है, बड़ा ही आनंद लगता है, एकदम ताल ठोक करके लड़ जाते हैं ने? किंतु ये असुरों का यह जो भाव है उससे कृष्ण भले ही प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं किंतु ये भक्ति नहीं है, ये प्रतिकूल क्रिया है, उनको जान से मार डालना चाहता है। इसलिए उन लोगों में अति व्याप्ति का ये दोष होता है, भक्ति नहीं है उनमें। और जशोदा जी कृष्ण का कान पकड़ती हैं और हाथ बांधती हैं तो कृष्ण रोने लगते हैं, दूध नहीं पिला करके हटा देती हैं और दूध को उतारने के लिए चूल्हे से चली जाती हैं। जशोदा जी का यह कार्य कृष्ण के लिए रुचकर नहीं होता तो रोने लगते हैं, तो इसको कहो जो भक्ति नहीं है वहां, कहे नहीं खबरदार ऐसा मत कहो, सब समय अनुकूल रूप में कृष्ण के प्रतिकूल ऐसा, कृष्ण क्या खाएगा, इसलिए दूध को उबालने से उसको जाती है रक्षा करने के लिए, वो गिर रहा है। इसलिए जशोदा में सब समय भले ही कृष्ण रोए करें तो भी वो भक्ति है। इसमें एक विचारणीय चीज है, अन्नाभिलाषिता, अन्नाभिलाष क्यों नहीं कहा गया, जो अन्नाभिलाषिता कहा, यदि कह दिए होते कि अन्नाभिलाष शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम तो कोई भी साधक भक्ति को कभी भी नहीं प्राप्त कर सकता था, यद्य अन्नाभिलाष कह दे। बारीकी से समझने से यह मालूम पड़ेगा, अन्यथा समझ में ही नहीं आएगा। अन्नाभिलाषिता और अन्नाभिलाष में कुछ अंतर है। अन्नाभिलाष हम लोग कभी भी छोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि मुक्त नहीं हो जाए, शरीर है तो खाना पड़े तो पड़ेगा ना। महाप्रसाद आया, एक आदमी की तबीयत खराब है, अब उसको खीर महन भोग और लड्डू इत्यादि सुंदर सुंदर चीज आए, और वो रोगी है तो खाएगा, कि अपने अनुकूल उसमें से जो होगा सब्जी जो कि केवल बॉइल्ड हो उसमें से ठाकुर जी की तुलसी लेकर के प्रणाम करके और वो यदि खाएगा तो अभी उसको हजम नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों को देखना है अन्नाभिलाष नहीं, अन्नाभिलाष तो करना ही पड़ेगा, जब तक शरीर है श्वास लेना पड़ेगा। यह श्वास हम भगवान के लिए लेते हैं ना अपने लिए लेते हैं, किसके लिए? किंतु हम आंख है हमको, हम देखते हैं तो किसके लिए देखते हैं? इधर देखते हैं उधर, भगवान के लिए देखते हैं ना अपने लिए देखते हैं? ये तो होगा भाई, ये तो रह नहीं सकता है बिना देखे। और इंद्रियां हैं, जब तक शरीर है तब तक से ये करना पड़ेगा, किंतु इसको भी भगवान की भक्ति के अनुकूल बनाओ। यदि छोड़ दोगे तो स्वतंत्र होकर के तुम्हें डुबा देंगे। इसलिए यहाँ पर अन्नाभिलाषिता कहा गया है, जान बूझ करके तुम्हारी ठीक स्थिति में तुम कोई भी भगवान के भक्ति के अतिरिक्त और कुछ मत करो, जान बूझ कर मत करो। किंतु तुम्हारा स्वभाव किसी कारण से बदल जाता है, जैसे आप एक साधारण स्थिति में है, उस समय मत कहिए हमको धन हो, हमको हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, साधारण स्थिति मत कहो। किंतु हठात 10-20 डकैत आ गए और गला पकड़ लिया और तलवार से गला काटने लगे, तो उस समय हठात निकल गया हे प्रभु मेरी रक्षा करो, स्वभाव कुछ चेंज हो गया है। इसलिए उस समय में यदि आप कहेंगे जे प्रभु रक्षा करो, तो वो भक्ति के लिए हानिकारक नहीं है। स्वाभाविक स्थिति में अन्नाभिलाषिता शून्यम तत्व, अन्नाभिलाष का जो गुण है हृदय में तुम्हारे ना आने पाए, व्याकुल हो गया बस कुछ कह दिया, तब तो वो क्षमा है। और नहीं तो साधारण स्थिति में जान जन पुत्र परिवार ये सब मांगेगा तो ये से भक्ति नष्ट हो जाएगी, वो भक्ति उसको नहीं कहते, उत्तम भक्ति वो नहीं होगी। कुछ विचार समझ में आया? स्वाभाविक स्थिति में कुछ नहीं होना चाहिए, और स्वाभाविक स्थिति हो जाए और उस समय में हम कुछ मांग लेते हैं, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसका लज्जा जा, उसकी लज्जा जा रही, उसने हाथ जोड़ करके हे प्रभु राखु शरण अब तो जीवन हारी, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारी, अब तो मेरी लज्जा गई, अब वो प्राण हमारा चला जाए तो बल्कि अच्छा है, आप रक्षा कीजिए। ये जो कहा गया असाधारण स्थिति में, इसलिए इसको भक्ति का विरोधी नहीं माना जाएगा। जो ही स्वाभाविक स्थिति आएगी कहिए नहीं प्रभु हमको इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए अस्वाभाविक स्थिति में यदि कुछ आ जाए तब तो है, और नहीं तो स्वाभाविक स्थिति में किसी प्रकार का धन जन पुत्र परिवार मुक्ति टुक्ति कुछ भी अपने लिए कुछ भी मत चाहो। और ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म आदि माने आलस्य प्रमाद अधिक सोना और ये सब चीजें भी भक्ति के लिए हानिकारक है। आलस्य नहीं होना चाहिए भक्ति में, अच्छा तो कल तो आज तो हरिनाम हम 1 लाख करने का संकल्प लिए थे, आज बस जहां भोजन का समय हुआ बस छूट गया, रात में आरती जाना है नींद नहीं आई, थोड़ा सा आलस्य आ रहा है तो छोड़ दिया, आरती में नहीं आए, भक्ति गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमको ज्ञान और कर्म आदि इन सब से बचना है। कर्म भी हमको जरूर करना पड़ेगा, किंतु ऐसा कर्म न हो कि भक्ति आच्छादित हो जाए। जैसे जन्माष्टमी का त्योहार होता है, हमको बहुत बड़ा भारी उत्सव करना है, उसमें लाखों लोगों को निमंत्रण करने का है, 5 महीने से उसमें लग गए लोगों को निमंत्रण करने में और धन संग्रह करने में, और जब तक जन्माष्टमी रही तब तक लोगों को देखने सुनने में लग गए, न तो हरिनाम हुआ न तो चिंतन हुआ न कोई काम हुआ, तो भक्ति वही हुआ। इसलिए ऐसा अनुष्ठान भी मत करो जो भक्ति एकदम हमारी समूल नष्ट हो गई, दूसरों के रिक्रिएशन में उसको लगा दिया। यदि इसके बदले में निरंतर चित्त की वृत्तियां भगवान में लगी रहती तो बहुत अच्छा था, दूसरों को भी लगा सकते थे। महापुरुषों के लिए यह चुटकी बजाते ही इतना बड़ा भारी काम हो जाता है, उनके लिए सहज है, किंतु हम थर्ड क्लास के वैष्णवों के लिए ये बड़ा भारी कभी कभी अनुपयोगी हो जाता है। इसलिए ज्ञान और कर्म, कर्म ऐसा मत करो जो भक्ति ही ढक जाए, लगे यज्ञ करने, इतना यज्ञ में लग गए जो भक्ति की वृत्ति नष्ट हो गई। ज्ञान की भी जरूरत है, तत्व ज्ञान की, यह भक्ति का पोषक है, किंतु निर्विशेष ब्रह्म इत्यादि का जो ज्ञान है यह भक्ति का जोड़ी है। इसलिए सबको दूर करके शुद्धा भक्ति का करना चाहिए अनुशीलन। अब ये तो हुआ उत्तमा स्वरूप सिद्धा भक्ति। जब व्यक्ति कोई इसका साधन करता है भक्ति का, कैसे साधन करेगा? कोटि कोटि जन्मों में साधुओं का संग होने से एक संस्कार बनता है। कोटि कोटि जन्मों में भक्ति उन्मुखी कोई सुकृति होती है, जैसे प्रहलाद महाराज जी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण के लड़के थे, दुसंग में आकर एक वेश्या पर आसक्त हो गए। वेश्या ने उनको सब प्रकार से जब चूस लिया तैसे तैसे सब, तो उनको अपने घर से बाहर कर दिया। ये बेचारे दुखी होकर के प्राण त्याग करने के लिए चल पड़े। चलते चलते एक वन में गए, तब तक सांझ हो गई, शाम वर्षा हो रही थी, जाड़े का समय, जंगल में बाघ भालू सब जान अभी उनको मार डालेंगे, और इधर खूब ठंड भी लग रही है, दिन भी भर कुछ खाया नहीं। अब वहां आए तो मरने से थोड़े से डर गए, और एक टूटा फूटा कोई खंडहर था उसी के अंदर में छिप गए, कोई मंदिर था। रात भर बिल बिलाते और रोते रहे, और वो वेश्या भी इनको ढूंढने के लिए अनुतप्त होते, जब मैंने इसका सर्वस्व ले लिया और अंत में घर से निकाल दिया, इसलिए अनुतप्त होकर के पीछे पीछे चल पड़ी। वो भी वहां पर आकर के उसी मंदिर में ठहर गई, और रात भर वो भी रोती रही, वो भी कोई किसी को देखा नहीं, दिन भर खाया नहीं, रात भर नहीं खाया, सोया भी नहीं। हम लोगों को तो हरि कथा में भी नींद आ जाती है, और वो बेचारे लोग रात भर तड़पते रहे। जब सवेरा हुआ तो उस वेश्या ने इनको देखा, और देख करके एकदम दौड़ से चरणों में लिपट गई और रोने लगी, हमको क्षमा कर दी, अब हम आपको नहीं त्याग करेंगे, और ये भी रोने लग गए। बाई चांस पिछले दिन जिसमें कि उन लोगों ने खाया नहीं, चतुर्दशी, नृसिंह चतुर्दशी थी, एकदम उपवास हो गया, खाया तो नहीं, परस्पर बिगड़ करके नहीं खाया कलह के कारण, किंतु नृसिंह चतुर्दशी का उपवास निर्जला हो गया दिन और रात, और सोना भी नहीं पड़ा, इसलिए जागरण भी हो गया, और मंदिर में रह गए। नृसिंह जी का वो मंदिर था खंड और टूटा फूटा। अब इसका इतना फल हुआ कि नारद जैसे महान व्यक्ति का कितना 60,000 वर्षों तक संग मिल गया जब वो गर्भ में थे। और नारद जी हैं, हाँ प्रहलाद महाराज 60,000 16 वर्ष या 12 वर्ष तक सुखदेव दे, और व्यास जी का संग पाया, और ये 60,000 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में रहे। क्यों? हिरण्यकश्यप हो गया था, तपस्या करने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या उसने की, और उस समय उसके माता रही नारद जी के आश्रम में, और उन्होंने उनकी सेवा बड़ी की। नारद जी ने कहा जे वर मांगो, उन्होंने कहा हमारा पुत्र हमारी इच्छा के अनुसार में प्रसव हो, हमारा पति जब आ जाएगा तो पुत्र पैदा हो, नहीं तो ये इंद्र मार डालेगा। इसलिए 60,000 वर्ष थे, और 60,000 वर्षों में सारी चीजें उनको सुनाया प्रहलाद महाराज, जितने तत्व ज्ञान और योग था उसे भर दिया। माता जी भूल गई, और बेटे को लक्ष्य करके कहा था, इसलिए उनको सभी कुछ याद रहा। इसलिए जन्म से ही महाभागवत उत्पन्न होकर के लिए देखो, एक नहीं जानने सुनने से भी सुकृति का फल इतना हुआ है। बिना सुकृति के, बिना साधु संग के भक्ति नहीं होती। भक्ति तो भगवत संग परिजायते सत्संग प्राप्यते, तुम भी सुकृत है पूर्व संचित है, बहुत बहुत जन्मों की सुकृति, संचित होने पर संस्कार हो। ऐसा मत समझ रहे कि हम लोग ऐसे ही आपके हम चले आए भजन करने के लिए, ऐसा मत समझो, एक ही जन्म में हुआ है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हो सकता है कि लाखों जन्म इसमें हो गए, और तब हम लोग इस बार थोड़ा सा सुजोग पाया, मनुष्य जन्म पा करके भक्तों का संग पाया है। ये यूं ही नहीं हो गया, एक्सीडेंट नहीं है ये, तो सुकृति से साधु संघ होता है। अब बिना साधु संघ के, बिना सुकृति के आपको सत्संग में रुचि नहीं होगी। जिनकी सुकृति नहीं है, संस्कार नहीं है वैसा, वो लोग कुछ दिन आकर के लाल कपड़े रख धारण करके भी कुछ सेवा का भान दिखला कर कभी अंत में गिर जाते हैं, पीछे में फंस जाते हैं। और जिनका संस्कार ठीक है वो लोग गिरते नहीं, क्रमशः धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बढ़ते हुए चले जाते हैं। अब ये भक्ति अनुशीलन करेंगे, साधु संघ हो गया, भजन में कुछ रुचि भी हुई, श्रद्धा हुई। श्रद्धा किसको कहते हैं? जब साधु संघ होते होते ये समझे ये कृष्ण का भजन करने से ही हमारे जीवन का समस्त कुछ करना हो गया, ऐसा पक्का विश्वास यदि होगा तो इसका नाम है श्रद्धा। ये श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक शास्त्रों के शासन के भय से जो उत्पन्न होती है श्रद्धा। यदि भगवत भजन नहीं किया तो मनुष्य जीवन में जो कुछ भी करते हैं तो भी नरक भोगना पड़ेगा, इसलिए एक प्रकार की ये श्रद्धा। गीता में लिखा है जरूर श्रद्धा हो नहीं तो तुम नरक में जाएगा। भगवान का भजन करना चाहिए तो इससे जो डर करके जो शास्त्रों के शासन के भय से जो श्रद्धा होती है वो एक प्रकार की, और एक श्रद्धा होती है पूर्व जन्म का संस्कार था, साधुओं का संग हुआ और हरि कथा ऐसा सुना, भागवत की कथा हमारे रूप गोस्वामी की हरि कथा सुना और सुन करके लोभ हुआ, जैसे मैया यशोदा जी कृष्ण को दूध पिलाती हैं और सेवा करती हैं, प्रेम करती हैं, या गोपियां जैसे कृष्ण को स्नेह करती हैं, प्रेम करती हैं, हम भी वैसा ही करें। ये लोभ से एक श्रद्धा, लोभ से हो अथवा शास्त्र शासन के द्वारा हो, जब श्रद्धा हो जाती है तो ऐसा होता है गुरु जी के वचनों में विश्वास, शास्त्रों के वचनों में पूर्ण विश्वास, वैष्णवों के वचनों में पूर्ण विश्वास, तीन चीज होती है उसमें। यदि गुरु हैं, यदि शास्त्र के वचनों के अनुसार और वैष्णवों के अनुसार में नहीं चलते हैं तो उनको गुरु नहीं मानना चाहिए। विचार करके देखेंगे, यदि गुरु शास्त्रों की बात नहीं मानता, कहेगा जैसे तुलसी के द्वारा हमारी पूजा करो तो ऐसे गुरु को छोड़ दो। यदि वैष्णव जो कहते हैं और वो गुरु भी वही कहते हैं किंतु शास्त्र में कुछ दूसरी तरह से लिखा है तो गुरु वैष्णव दोनों के बात को मानो, वो बात को छोड़ दो शास्त्र। यदि शास्त्र और गुरु एक तरह की बात कहते हैं किंतु वैष्णव वो बने हुए उस बात को नहीं मानते हैं तो ऐसे वैष्णवों को छोड़ दो, तो एक तरफ में होना चाहिए और नहीं तो तुम पछताओगे, भक्ति नहीं होगी। जब इस प्रकार की श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाएगा तब ऐसा होगा विश्व ब्रह्मांड भी हमारा विरोधी हो जाएगा, घर के लोग भी विरोधी हो जाएंगे, मैं भक्ति नहीं छोड़ सकता, संसार भी एक तरफ में खड़ा हो जाए, विपत्ति आ जाए, प्रहलाद महाराज पर जैसी विपत्ति आई तो अभी भगवत भजन हम नहीं छोड़ेंगे, एकदम दृढ़ मर जाएंगे, खंड खंड यदि हो जाए देह प्राण तो वो भजन हमी नहीं छाड़ी होगा। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं अरे एक क्या हमें, कोटि कोटि बोटी कर दो, बोटी बोटी काट दो, खंड खंड कर दो तभी मैं हरिनाम कृष्ण नाम नहीं छोड़ूंगा, ये इसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा हो गई, वैष्णवों का संग हुआ, वैष्णव ने कहा जी भाई तुमको यदि भजन करना है तो गुरु करो, गुरु पदाश्रय होना चाहिए, कहा जी ठीक है आपकी बात मानते हैं, तब वो गुरु पदाश्रय, किस लिए? कृष्ण का भजन करने के लिए गुरु पदाश्रय किया। फिर क्या करेगा? गुरु के अनुगत होकर के जो शिक्षा देते हैं उन शिक्षाओं का पालन करना होगा और गुरु को विषम्भ रूप में सेवा करनी होगी। विषम्भ माने क्या? विगत संभ, अर्थात प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करनी पड़ेगी भाई, बिना सेवा किए नहीं होगा। तो फिर जो उसने साधन बतलाया, क्या साधन? अब तुम करो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शन सखात्म निवेदनम, ये सब भक्ति के 9 अंग हैं। भगवान के संबंध में, गुरु के संबंध में, माया के संबंध में ये सब तुम सुनो। कृष्ण क्या है, जीव क्या तत्व है, माया क्या तत्व है, भक्ति किसको कहते हैं, ये सबको सुनना पड़ेगा। तत्कीर्तनम, तब भगवान नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, उनके परिकरों का, उनके लीलाओं का कीर्तन करेंगे। यदि श्रवण नहीं हुआ तो कीर्तन नहीं कर सकते। पहले आपने श्रवण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, प्रचार करने के लिए निकल पड़े, क्या प्रचार करेंगे? प्रचार करेंगे दो चार लड़कियों को, किशोरियों को बुला लेकर के, और उनके जाल में फंस जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, पहले श्रवण करो फिर कीर्तन करो। पहले श्रवण ही नहीं किया कुछ और कीर्तन करने के लिए, तो क्या हो गया? हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद में रुपया पैसा कुछ पुस्तक बिक्री करने से मिला और उसको पॉकेट में दबाया और फिर लौटे ही नहीं प्रचार से, ऐसा ही हो। बैंक बैलेंस कर लेंगे, पता ही नहीं जो कहां गया। इसलिए पहले प्रचार नहीं, पहले आचार को सुनो। अरे क्या तुमको कहना है ये तो सुनो। पोस्टमैन को पैसा दिया गया, किसी गलत आदमी को ही लोगों ने समझा लिया ये पोस्टमैन, वो पोस्टमैन है नहीं। उसको पैसा दिया, जे तुम देखा जैसे सबका पैसा बांटता है तो वो हमारा भी पैसा बांट आएगा। उसको 1,00,000 रुपया दे भाई, हमारे आदमी को दे देगा, देगा वो? ऑथराइज तो है नहीं वो। इसलिए भाई प्यून जैसा बनो, गवर्नमेंट जिसको नियुक्त करती है और कहता है ये चीज उसको देना है, समझो जो क्या चीज देना है, किसको देना है, और बिना समझे हुए दूसरे का रुपया तीसरे को दे दिया तो वो जेल में जाएगा। इसलिए पहले समझो ये हमको क्या प्रचार करना है, पहले आचरण करो। आचरण करी करो पर उनकी भारत भूमि ते जन्म हई ल जार, जीवन सार्थक करी करो। आचिनोत जस शास्त्रार्थ, जो आचरण करता है तब पीछे तो हरदास ठाकुर का महाप्रभु जी ने क्या कहा, कोई कोई केवल प्रचार करते हैं वो कर्मी है, कोई कोई केवल मात्र आचार करते हैं प्रचार नहीं करते वो मध्यम है। जो लोग आचार और प्रचार दोनों करते हैं ये उत्तम है। अपने जीवन में आचरण करके हरिदास ठाकुर के लिए कहते हैं कि तुम 1,03,00,000 परिणाम करता है और दूसरों को भी तुम सिखलाते हो, इसलिए नाम के आप आचार्य हैं, जो आचार और प्रचार दोनों करता है। हम लोगों को दोनों चीज करना है, किंतु पहले समझ बुझ करके, जान करके ना। अब हमने समझ लिया जो उत्तमा भक्ति किसको हो कहते हैं, अब उत्तम भक्ति किसको कहते हैं, भाव भक्ति किसको कहते हैं, साधन भक्ति किसको कहते हैं, ये समझना चाहिए। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दशाख्यात्मनिवेदन, और 5 प्रकार के इसको और काट छाट के 64 प्रकार की भक्ति में से बतलाया गया। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमुक्ति श्रद्धा, सकल साधन श्रेष्ठ यही पंचंग, कृष्ण प्रेम जन्म इतने पारे, ये 5 अल्प संग। यदि थोड़ा सा भी ये किया ना, क्या साधु संग, रसिक वैष्णवों का संग, रश्मोई भाई वृंदावन अथवा नवदीप धाम में आश्रय लेकर के भजन कर रहे हैं, वैष्णवों का संग किया, एक वृंदावन नवदीप धाम रसिक भूमि का अवलंबन किया, 2 उसमें भागवत श्रवण कर रहे हैं, 3 श्रीमूर्ति का श्रद्धा पूर्वक राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, 4 और नाम कीर्तन भगवान के नाम, क्या क्या नाम, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, ये राधा कांत सबसे श्रेष्ठ नामों में से, राधा कांत मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा गोविंद ये सब राधा रमण इत्यादि नाम जो हैं समस्त नामों से श्रेष्ठ है, ब्रज से संबंधित इन्हीं नामों का कीर्तन, ये 5 प्रकार, इन 5ों में 3 श्रेष्ठ, श्रवणम कीर्तनम स्मरण, इन 3ों में भी सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन इसमें सभी कुछ आ जाएगा ने? किंतु केवल नाम संकीर्तन करेंगे, किंतु किस प्रकार से करेंगे, जीवा से नाम संकीर्तन, मन के द्वारा भगवान की उन उन लीलाओं का चिंतन, उसी समय में राधा रमण, राधा जी से कृष्ण का जो विलास तत्व है इस सब का स्मरण करते हुए उनका नाम करें, वृंदावन में रहकर, वैसे ही नहीं रसिक वैष्णव के अनुगत्य में रह करके, वृंदावन में रह करके उन नामों को जिह्वा के साथ और मन के द्वारा उनका लीलाओं का चिंतन करना ही समस्त शिक्षाओं का सार है, रूप गोस्वामी ने कहा। इसको कहते हैं साधन। जब यह साधन भाव को उत्पन्न कराने के लिए हो तब उसको कहते हैं साधन। ऐसे नहीं मान लें कि हम अर्चन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, बस महाप्रसाद पा रहे हैं तो खूब आप पा रहे हैं। महाप्रसाद की सेवा करना भी एक भक्ति है, काम है, किंतु खा रहे हैं अपने पेट भरने करने के लिए तो उल्टा हो जाए, उसके लिए काम पैदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग यदि भाव को उत्पन्न करने के लिए साधन कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तब तो इसको कहेंगे साधन, नहीं तो साधन ही नहीं कहेंगे। अर्चन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? अर्चन कर रहे हैं ठाकुर जी की सेवा, किंतु लक्ष्य कुछ आगे के लिए नहीं है तो वो नहीं। हम बगीचा लगा रहे हैं, बगीचा लगाना भक्ति नहीं है, किंतु उस बगीचे का फूल ठाकुर जी को आए वैष्णवों की सेवा के लिए, तब तो वो भक्ति हो जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा। इसलिए भाव को उत्पन्न करने वाला हो, और भाव भक्ति इसको कहते हैं जिससे कि प्रेम उत्पन्न हो, ये सब साधन है। अब ये साधनों में कैसे साधन हम करें? एक घंटा प्राय हो गया ना क्या? तो ये साधन कैसे हम लोग करेंगे, इस पर खूब गहराई से विचार करके हम यदि साधन करें तब तो भाव उत्पन्न होगा। और सारा जीवन 10 लाख जन्म तक वो साधन ही करते रहे, भाव उत्पन्न नहीं हुआ तो कुछ लाभ। एक गाय को हम पाल रखे हैं, गाय को हम 10 वर्ष से पालते हैं, किंतु बछड़ा ही नहीं हुआ, दूध नहीं मिला, तो लाभ क्या हुआ? बगीचे में पेड़ लगाया और उसमें फल ही नहीं हो रहा है, तो फिर देखेंगे हमारे साधन को ये हमारे अनर्थ दूर हो रहे हैं क्रमशः, और वो भाव के रूप में परिणत हो रहा है, तब तो आगे बढ़ेंगे। अन्य तो हमारे अंदर में कुछ गलती है, उसको सुधार करने की चेष्टा करेंगे, अन्यथा वो साधन ही नहीं। कैसे हम साधन करेंगे इस पर विचार हम लोग करें। पहले हम चलेंगे साधन करते करते जितना ही परिमाण में अनर्थ दूर होगा उतना ही परिमाण में हमारी निष्ठा होती जाएगी। निष्ठा माने निश्चयात्मक बुद्धि, और निश्चिता भक्ति किसको कहते हैं, निश्चिता भक्ति किसको कहते हैं, इस पर भी हम लोग विचार करें। यदि होगा तो शाम को हम लोग इस पर विचार करेंगे, एक घंटा प्राय हो गया है, आज यहीं तक रखते हैं। निष्ठा भक्ति किसको कहें, अनिश्चिता भक्ति किसको कहते हैं, अनिश्चिता भक्ति से भक्ति निष्ठा में कैसे आएगी, और फिर उसे रुचि कैसे उत्पन्न होगी, रुचि से क्रमशः आसक्ति और उससे भाव कैसे पैदा होता है, इस भक्ति प्रशामित सिंधु बिंदु से हम लोग विचार करके देखें। आज शाम को यदि होगा इसके संबंध में संक्षिप्त में हम लोग बतलाने की चीज़।